हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे
राम
हरे राम
राम राम हरे हरे। सभी अतिथियों से विनती है कि वे बैठ जाएं। अभी यहाँ पे प्रवचन होगा। हर रविवार को सुबह 10:30 से 12:30 इस समय में हम रविवारीय सत्संग कार्यक्रम संडे फिस्ट मनाते हैं। तो हम सबसे अनुरोध करते हैं कि वे कृपया बैठ जाए। तुरंत 5 मिनट में प्रवचन चालू हो जाएगा। गोवर्धन इको विलेज में आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत। सभी जन दर्शन लेने के पश्चात यहाँ पे प्रवचन के लिए बैठ सकते हैं। मेरे राइट साइड में व्यासासन है, वहाँ पे प्रवचन चालू होगा। तो दर्शन लेने के पश्चात सभी से विनती है कि वे प्रवचन के लिए बैठ जाए। हर रविवार को सुबह 10:30 से 12:30 इस समय में हम रविवारीय सत्संग कार्यक्रम मनाते हैं। 10:30 से 11 बजे तक कीर्तन होता है। 11 से 12 बजे तक प्रवचन होता है। 12 से 12:30 श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होता है। और 12:30 बजे सबके लिए लंच प्रसाद की भी व्यवस्था है। जो भक्त जो अतिथि इस संडे फिश कार्यक्रम में बैठते हैं, इस प्रवचन का आनंद लेते हैं, उनके लिए विशेष उपहार और विशेष कूपन दिया जाता है। उनके लिए विशेष प्रसाद की व्यवस्था भी की जाती है। तो हम सबसे अनुरोध करते हैं कि कृपया प्रवचन के लिए बैठ जाए। प्रवचन के पश्चात महाआरती और महाप्रसाद भी होगा। हरे कृष्णा। आज हमें प्रवचन देने के लिए आने वाले हैं श्रीमान आदिकेशव प्रभु। आदिकेशव प्रभु श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के वरिष्ठ काउंसिलर है, सीनियर भक्त है। साथ ही साथ वे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, जो कि मीरा रोड में स्थित 250 बेड वाला हॉस्पिटल है, वहाँ के मेडिकल डायरेक्टर रह चुके हैं। प्रभु जी यहाँ पे गोवर्धन इको विलेज में कम्युनिटी हेड बोल के सेवा निभाते हैं। साथ ही साथ गोवर्धन आयुर्वेदा है, उसके भी वे डायरेक्टर है। और यहाँ की जो भक्तों की कम्युनिटी है उनका बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी हमें प्रवचन देने के लिए उपलब्ध है। प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे पारंपरिक रूप से 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो हम सभी अतिथियों से सभी भक्तों से विनती करते हैं कि कृपया प्रवचन के लिए बैठ जाए। धाम का महिमा धाम में आने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद ही पता चलता है। गोवर्धन इको विलेज के बारे में भी ऐसा ही कुछ है। आप अगर प्रवचन में बैठेंगे तो आपको इसका पूरा पूरा लाभ होगा। तो जो भी तीर्थयात्री जो भी भक्त अतिथि यहाँ पे आए हैं, हम उनसे विनती करते हैं कि वे प्रवचन में बैठ जाए। व्यासासन की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो और अच्छा होगा। लेडीज और जेंट्स थोड़ा अलग अलग बैठिए। लेडीज माता जी पीछे बैठ सकती है, जेंट्स थोड़ा आगे बैठिए।
हरे कृष्णा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनाचारी यमुना तीरा वनाचारिया जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाध श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन ललिता देवी राधा मदन मोहन ललिता देवी जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय हरि नाम संकीर्तन की हरे कृष्णा। सो आज सबसे पहले सभी का स्वागत है। आप दूर दूर से आए हैं यहाँ पर। हमारा ये भाग्य है कि हम इस तरह बैठकर हमारे समय का अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये एक भाग्य है। ऐसा अवसर हर एक को मिलता नहीं है। तो वैसे जगह तो तीर्थ स्थान है ही, लेकिन इच्छा हमारी है ना समय का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। समय तो बहते जा रहा है, गया समय फिर से नहीं आएगा। तो मैं सबके लिए हार्दिक शुभेच्छा प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम इस तरह हमारे आयु का जो समय मालूम नहीं है कितना है, उसका हम सही तरह से इस्तेमाल करें और इस जो भी मनुष्य शरीर का एक उत्तरदायित्व है उसको निभाते हुए हम हमारे लक्ष्य तक पहुँचे और यही हमारा सच्चा जीवन का यश है। धन्यवाद। तो आज के दिन ये जो हम रविवार के दिन ऐसे मिलते हैं, 11 से 12 एक सत्संग का कार्यक्रम होता है, तो आज एक ऐसा श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। वैसे आज का विषय मालूम है आपको क्या है? आज का विषय किसी ने सुना है? शायद कुछ लोगों को बताया होगा कि आज एक विषय दिया गया है। नहीं मालूम? वाणी की संस्कृति। क्या बोला मैंने? वाणी की संस्कृति। अभी शायद बहुत लोग अरे इसमें क्या चर्चा करना है, तो देखते हैं कुछ समय हम साथ में हैं। हाँ, क्या है इसमें? कुछ भक्ति के लिए कुछ अनुकूल ऐसे कुछ है या ऐसे कुछ विषय निकाल दिया है ना? बोलने के लिए विषय बहुत है ना, करोड़ों विषय है ना, लेकिन हमने सुना चलो हम वाणी की संस्कृति के ऊपर बात करें। उसका शुरुआत ही बहुत गंभीर था, इतने आवाज हो रहा था। और आज का शीर्षक है हमें शांतता रखना चाहिए ताकि हम जो चर्चा कर रहे हैं सबको सुनाई दे। तो मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ा आप आपस में अगर बात कर रहे हैं तो इतने ही जोर से बात कीजिए कि जिनको सुनना चाहिए सिर्फ उनको ही सुनना चाहिए, बस ठीक है? ठीक है, बरोबर है ना? 17th कुटे गेलो। ये भगवद गीता का 17वें अध्याय का एक श्लोक है, इसी शीर्षक से संबंधित। क्या शीर्षक है? वाणी की संस्कृति। ये भूलना नहीं है, अंत तक हमें उसको केंद्र में रखना है। और यहाँ से अब चले जाएंगे तभी कुछ हमारे मन में विचार करने जैसा है। हम तो यहीं नहीं रहेंगे, यहाँ से घर जाएंगे, लेकिन इसे नहीं भूलना है। तो 17वें अध्याय में भगवान एक बहुत ही अच्छा संदेश देते हैं हमें। पूरा भगवद गीता में सब संदेश ही संदेश है हमारे लिए, लेकिन उसमें से आज का ये संदेश विशेष हम सबके लिए ये बता रहा है। जो बोर्ड में लिखा हुआ है मैं उच्चार करूंगा, आप मेरे साथ उच्चार कीजिए हो सके, ठीक है? मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलिए। ये हमारी वाणी की शुद्धिकरण के लिए। ये भी अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते। कोई प्रयास करना चाहता है? अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च हरे कृष्णा। तो इस संस्कृत श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। क्या लिखा है, इससे हमारे लिए सीखने के लिए क्या है? प्रभुपाद अनुवाद में बता रहे हैं, सच्चे बाने वाले हितकार तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाए। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वो उनसे बोले तो उसके विद्यार्थी नहीं है। जो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य न बोले, यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो, उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य के विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, यही वाणी की तपस्या कही जाती है। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजना शलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये जो जीवा जो है इसको नियंत्रण करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है ना? सही है ना? अगर मैं आपको कहूँ कि 6 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए, आप निर्जल रहेंगे, और यहाँ मैं कहूँ कि 6 घंटे तक आप एक मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, कौन सा आपको कठिन लगता है? कौन सा कठिन लगता है? माता जी सब हंसने लगती हैं, तो जवाब मिल गया मुझे, है ना? जीवा को नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल है ना? ऐसा हर एक व्यक्ति के दिल में ऐसे जल रहा है अंदर, कुछ बोलना है मुझे, मेरी बात सुनो, सच है ना? तो यहाँ पे भगवद गीता में क्या बताया है, बोलना तो स्वाभाविक है, सब लोग बोलते हैं, जानवर भी बोलते हैं, पक्षियाँ बोलती हैं, पशु बोलते, सब बोलते हैं। उनका बोलने का क्या होता है, खाना कहाँ मिलेगा, सोना कहाँ है, मैथुन कहाँ करना है, उनकी भाषा अलग है। लेकिन मनुष्य भी बोलते रहता है, लेकिन विशेषकर आज इस विषय में बोला है, जब हम बोलते हैं ना, बोलते समय हम दूसरों को यहाँ पे क्या हिंदी में क्या शब्द यूज किया है, हाँ, शुद्ध नहीं करना चाहिए। अब ये शुद्ध वर्ड यानी मन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम जब बोलते हैं ऐसे हम सोचते नहीं ना, सोचते हैं क्या बोल, अरे बोल दिया मैंने, हाँ ये मेरा तो बोलने का तरीका ही ऐसा है, मैं तो सच ही बताया ना। यहाँ बोलता है नहीं, जरूरत नहीं है तो नहीं करना चाहिए। और दूसरा है, हमेशा जो भी बोलते हैं वो सत्य होना चाहिए। तीसरा है प्रियम, प्रियम करते हैं बोलना मधुर होना चाहिए। और चौथा है, जब हम बोलते हैं उसके हित के लिए होना चाहिए। आपको क्या लगता है, जब भी हम बोलते हैं तो चारों हो सकता है, चारों हो सकता है कभी? इम्पॉसिबल है। डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, सच भी बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे और उसके हित के लिए, देखेंगे आगे क्या बोलते हैं। लेकिन ये एक तपस्या है। तो हम क्यों चर्चा कर रहे हैं ये तपस्या, इसलिए आज का जो शीर्षक आ रहा है वाणी की संस्कृति। अभी मैं जब संस्कृति बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है, संस्कृति का एक क्या भाव आता है, क्या अर्थ होता है, संस्कृति का मतलब क्या है? अभी हम लोग ये जगह का भी एक संस्कृति है ना, चप्पल निकाल के आना पड़ता है, मंदिर की संस्कृति है, चप्पल पहन के आ सकते हैं आप, प्रणाम करते हैं भगवान के सामने, माता हाँ टेकते हैं, आवाज नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है? नियंत्रण नहीं है। अगर ऐसे जगह पे नहीं हो रहा है तो फिर घर में क्या होते होगा, सोचिए आप घर में कैसे होगा, हाँ। तो संस्कृति का मतलब है हर एक देश, हर एक समाज, हर एक जात, उनका अलग अलग तरह का एक संस्कृति होता है कि नहीं? अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें भी खाने का अलग होती है ना, अरे ये तो दक्षिण भारत का है, इसका तो अलग है, ये तो महाराष्ट्र ने, कपड़े भी अलग होते हैं, हाँ संगीत अलग होते हैं, नृत्य अलग होते हैं, जीवन शैली अलग होते हैं, घर में रहने का ढंग, और एक भाषा भी अलग होती है। भाषा में भी होती है ना, जैसे हम एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, दो लोग बहुत ही मित्रता से मित्र हैं, बैठ के बात कर रहे, लेकिन ऐसे जोर जोर से बोल रहे हैं, तो हमने पूछा अब इतने जोर से बोल, नहीं नहीं वो हमारे हमारे में ऐसा ही होता है, कोई द्वेष नहीं है, हम लोग मित्र है, लेकिन हम लोग बोलते हैं जोर से। तो ये भी एक संस्कृति है, यानी एक अभी संस्कृति है कि विकृति है वो अभी आगे पता चलेगा, लेकिन एक तरह का एक समाज में ऐसे हो रहा है, तो जो होता है उसी को हम स्वीकार करते हैं ना, उसी से हम सीख लेते हैं, है ना, कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग, जिस तरह के लोगों के साथ आप संग करेंगे उस तरह के लोगों का आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, यहाँ से कुछ लोग परदेश चले जाते हैं, 6 महीने के बाद वापस आते हैं तो उन लोगों का बोलने का ढंग बदल जाता है, हमने देखा है कभी, तो उनको जरा अरे पापा क्या हो गया, नहीं नहीं वो इंग्लिश बदल गया थोड़ा, क्योंकि वहाँ गए तो वहाँ का संस्कृति। तो विशेषकर आज का जो विषय है वाचा के ऊपर है, तो ये सच है कि इसको नियंत्रण में रखना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल है, इसलिए अगर भक्ति में प्रगति करना है तो इसको जो नियंत्रण करना मुश्किल है उसे नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि भक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी जीवा जो है बहुत ही एक छोटा सा अंग है हमारे शरीर का, लेकिन इससे हमारी दिशा इस तरफ जा सकती है या इस तरफ जा सकती है, हाँ जैसे बड़ा जो नाव होता है ना, नाव का जो एक पीछे एक रडर बोलते हैं उसे, वो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा दिशा बदलने से पूरा नाव की दिशा बदल जाती। सो उसी तरह से हम कैसे बोलेंगे वैसे हमारी जीवन का लक्ष्य होगा। तो ये हमारे संस्थापक आचार्य बताते हैं कि बोलने के लिए बहुत सारे विषय अभी मंदिर में है तो थोड़ा जीवा नियंत्रण है, जैसे मंदिर से बाहर जाएंगे कितने विषय भगवान से संबंधित कम है, कुछ भी हो है ना, क्रिकेट के बारे में बोलना है या पिक्चर क्या चल रहा है या पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है या इधर क्या हो गया या पड़ोसी में क्या हो गया, अनगिनत विषय है। लेकिन एक चेतावनी दिया है, जब हम नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो आप चेतावनी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जब हम ज़रूरत नहीं है तभी भी पक पक करते रहते हैं, वो जो वाणी है एक हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रॉक को, हाँ मेढक ना, तो मेढक आपने देखा बारिश के मौसम में उसको मेढक ऐसे आवाज़ करते हैं और उसके पेट ऐसे फूल जाते हैं, आपने देखा होगा, और उसको लगता है कि वो इतना अच्छा कुछ बोल रहा है लेकिन वाली आवाज़ कर रहा है, उससे कौन आकर्षित हो रहा है, सांप आकर्षित हो रहा है। सो इसी तरह से अगर हमारी भी वाणी ऐसे विषयों में ज़्यादा लगती है तो हमारा आयु सिर्फ कम होते, वो तो सबका होता है, लेकिन हम मृत्यु की ओर बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। लेकिन वही वाणी को अगर ऐसे विषयों में लगाएं, ज़रूरत है वो तो बोलना है, लेकिन ज़्यादातर अगर ऐसे विषयों में लगाते हैं तो हम इस संसार के भवसागर के दुख के बंधन से मुक्त हो रहे हैं, यानी इसका मतलब मृत्यु से भी पार हो रहे हैं। फ़र्क है कि नहीं, हाँ है सिर्फ बोलने के लिए, अरे क्या है ये तो सिर्फ बोलना है, लेकिन नियंत्रण नहीं है तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अर्जुन भी गीता में पूछते हैं, आपने मुझे इतने सब बताया लेकिन कैसा होता है, जो एकदम मन जिसका बहुत स्थिर है बहुत भक्ति में लगा है वो कैसी भाषा होती है, वो एक बोलते हैं स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधि तस्य केशवा स्थिताधि किम प्रभाषेता किम आसित व्रजेता किम। अर्जुन पूछते ऐसा व्यक्ति कैसे बोलता है, क्या बोलता है, कैसे बोलता है, उसका उत्तर यही है कि वो अगर ज़रूरत है तो ही बोलता है, नहीं तो बोलता नहीं, अगर कुछ बोलना है तो बोलता है, नहीं तो नहीं बोलता है। लेकिन भक्ति के लिए मौन रखना ये भी बहुत बड़ा एक है ना, आपने सुना है कैसे बहुत सारे लोग 12 साल से मौन व्रत, कितने लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं, ऐसे लिखा है कि ये 12 साल से कभी बोले ही नहीं, तो हम ये नहीं कहते कि हमको मौन रखना है, ऐसा तो नहीं बोला है ना, लेकिन ये बोलना है जो हमारी वाणी की संस्कृति हो, ऐसे विषय को बोलो। अभी आप जॉब कर रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं तो उस जहाँ ज़रूरत है वो तो बोलना पड़ता है, लेकिन जब भी ज़्यादा से ज़्यादा जीवा को इस विषय में लगाते हैं तो वो है वाणी की संस्कृति, ठीक है, नहीं तो यही वाणी से हिटलर जैसे लोगों ने लोगों पे दिल में द्वेष, इतना द्वेष जगा दिया, और यही जीवा से प्रभुपाद ने दुनिया में पूरा एक आंदोलन रचाया जहाँ पे लोग भक्त बन गए कृष्ण के, जीवा तो वही है, तो कितना अंतर है देखो, तो इसका मतलब जो विषय मुँह से निकलता है तो ये एक बहुत ही एक खतरनाक बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक पिस्तौल की तरह है, उसमें बुलेट जमा हुआ है हाँ, और उसको लेके घूम रहे, कभी मुँह से क्या निकल जाएगा, किस तरह का लोगों का हृदय तोड़ डालेगी, रिश्ता टूट जाएगा, फिर हमेशा के लिए टूट गया, हम नहीं नहीं बोल सकते अरे 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 मेरी गलती होगी, उसको वापस खेल ले सकते हैं हम, तो ये वेग बहुत ही एक तीव्र वेग है जिससे बहुत सारे विषय। तो संस्कृति का मतलब है कि ऐसे जहाँ पे इस विषयों को केंद्र में रखा जाता है हाँ, तो हर एक समाज हर एक जात हर एक इसमें अलग होती है, लेकिन भक्ति के लिए ये विषय हम चर्चा कर रहे हैं। ये भी सच है कि हर एक व्यक्ति जो भी यहाँ हैं और हर एक चीज़ें जो दिखाई दे रही हमें, ये तीन गुणों के प्रभाव में होते हैं हाँ, एक सद्गुण होता है, एक रजगुण होता है, एक तमगुण होता है, ये सुना है आपने कभी, ये भी भगवद गीता का ज्ञान है, ये हम अपने आप से पूछ सकते हैं हाँ, जैसे कुछ पेड़ होते हैं अच्छे मीठे फल देते हैं तो सद्गुण के, कुछ कड़वे फल देते हैं, कुछ फल देते ही नहीं हैं, तो हर एक पेड़ हर एक पशु हर एक इंसान हर एक का कुछ ना कुछ एक भौतिक संसार के गुणों का प्रभाव से होता है। व्यक्ति को भी देखो, कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई बहुत विचलित होता है, हमेशा डिस्टर्ब रहता है, एक जगह पे बैठ नहीं सकता है, और एक तीसरा होता है उसको किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, कभी मौका मिला सो जाता है, हाँ, और उसको कुछ ज़्यादा उत्साह नहीं है, कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको तो कहा जाता है कि वो तमगुण में। तो तमगुण है, रजगुण है, लेकिन सद्गुण है वो बहुत भक्ति के लिए अनुकूल होता है, यानी उस माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सद्गुण का क्या होता है व्यवहार, कौन से पहले बोले, तमगुण बोले, रजगुण बोले या सद्गुण बोले, आपको क्या लगता है कहाँ से शुरू करें? सद्गुण से सुने। ओके, सद्गुण के जो व्यक्ति होते हैं, अपने आप से हम पूछ सकते हैं, हमेशा नम्र होता है, और यही नहीं, जब भी बोलता है तो उसके दिल में कुछ अपेक्षा नहीं होती है कि मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे ये मिलेगा, अपेक्षा कुछ नहीं है, और धर्म के अनुसार बोलता है, बहुत शांत स्वभाव का होता है, और उसके बोलने का ये भी बहुत ही एक क्या बोलते हैं ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी मुंह से आया कुछ भी बोलता है, तो ये है सद्गुण का। और जो रजगुण वाला हमेशा ये बताता है कि मैंने क्या किया है, मानते हो मैंने क्या किया, अरे मैं देखता हूँ उसको, सबको उखाड़ के फेंक दूंगा, मैं देखता हूँ, मैं आने दो उसको, ये कौन सा प्रभाव हो गया, रजगुण का प्रभाव हो गया, और यही बात करता है, ऐसे बात करूंगा इससे क्या मिलेगा मुझे, और बहुत जिद्दी भी होता है, अपना ही बात को पकड़ के रखता, बस मैं जो बोला हूँ वही सही है। लेकिन सद्गुण वाला अगर गलती होता है तो माफ़ी मांगता है, रजगुण वाला कभी माफ़ी नहीं मांगेगा, बोलते बस ये सही है, बस यही है और कुछ नहीं हो सकता। अभी तमगुण में भी है, तमगुण का आदमी हमेशा क्रोधित रहता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष रहती है, मूर्ख भी रहता है, नशे में रहता है तो मूर्ख है, उसके मुँह से क्या आता है मालूम नहीं, कुछ भी बोलता है हम मूर्ख बोलते हैं, लेकिन नशे में है, और वैसे ही नहीं दूसरों को बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत ठेस पहुंचाता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि वो तमगुण में है। तो ये सब हमें ज्ञान इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपने आप को पहचाने, हम सुधारें और हमारे चेतना को ऊपर ले आए, क्योंकि भगवान आकर्षित होते हैं सतगुण से, रजगुण से नहीं। हाँ, तो ये जो एक वाणी हो गया विषय, उसके बारे में, और संस्कृति होगी, संस्कृति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के संस्कृति में भक्ति बढ़ती है, जहाँ पे लोग बहुत शांत है, बहुत नम्र है, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, हाँ, जैसे यहाँ के जो है उसमें एक दूसरे को लोग प्रभु कहते हैं, इसका मतलब है कि मैं आपका सेवक हूँ, हाँ, अपने पत्नी के अलावा हर एक महिला को माताजी कहते हैं, माताजी का मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ उनका कुछ निछाव, इज्जत करते हैं कि हर एक होती है वो माँ के समान है, तो ये भी एक संस्कृति है, सही है। लेकिन आज के जो श्लोक में ये बताया, जो चार चीज़ें हैं, यानी दूसरों को ऐसे शब्द नहीं करना, सच बोलना और प्रेम से बोलना और हित में होना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, ऐसा नहीं कि अगर सच भी बोलना चाहते हैं लेकिन अगर सच कड़वा है तो, अगर बोलना ही है तो बात है, लेकिन अगर आप दिल किसी के दिल को दर्द कर रहे हैं तो फिर नहीं बोलना चाहिए, तो लेकिन सच तो बोलना है, लिखा है यहाँ पे, सच ही बोलना चाहिए। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि झूठ भी बोल रहे हैं लेकिन वो किसी के हित के लिए, किसी का अनुभव है ऐसा, आप झूठ बोल रहे हैं लेकिन उसके हित के लिए, सोच सकते हैं ऐसे कुछ, माताओं को मालूम होना चाहिए, जब बच्चे को अगर दवा पिलाना है, हाँ, तो माँ क्या कहती है कि ये मीठा है या मिठाई में मिला के देती है, अरे ये मिठाई है तो ये झूठ है ना, लेकिन इसमें हित है कि नहीं, वैसे ही, हाँ, तो वैसे कभी झूठ भी होता है तो वो भी अगर हित के लिए है तो वो भी एक संस्कृति। तो हम कैसे समझे संस्कृति क्या होता है, जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे समझो अभी गेहूं है, अभी गेहूं का क्या बना सकते हैं हम, रोटी बना सकते हैं, तो ये हो गया संस्कृति। वही गेहूं का अगर कुछ दुरुपयोग करते और दूसरा कुछ करते हैं वो हो गया विकृति। जैसे फल होता है ना, फल को अच्छा काट के भगवान को अर्पण करे तो क्या हुआ वो, लेकिन वही फल को सड़ा कर उसे क्या बना सकते हैं, शराब निकाल सकते हैं, तो उसको कहते हैं विकृति। तो इस तरह हर एक चीज, भाषा हो या ड्रेस हो या हमारा बोलने का व्यवहार हो, लाइफस्टाइल हो, ये संस्कृति हो सकती है या विकृति हो सकती है। जैसे आजकल खास देखते हैं कि हमारे टेलीविजन के माध्यम में से बहुत सारे ऐसे सीखने सीख जाते हैं, खास करके हमारे यूथ में बोलने का ढंग बदल जाता है। हाँ, कुछ ऐसे भी हमने देखते हैं ऐसे कि कई बार ऐसे होता है कि स्वाभाविक बोलते बोलते ऐसे कुछ गालियाँ भी दे देते, ऐसे बोलते हैं गालियाँ देना ये भी एक, लेकिन वो तो विकृति हो गया ना। हाँ, संस्कृति में गालियाँ नहीं देते हैं, लेकिन वो एक संस्कृति हो गया आधुनिक जीवन में, तो वो ऐसे बोलना भी उसको समझ जाता है कि अगर नहीं बोल रहा है तो बोलता है अरे ये तो बहुत पुराने ख्यालात का है, अरे इसको क्या है। तो मित्रता में रहने के लिए, अरे अगर मैं ऐसा नहीं बात करूँगा तो लोग मुझे मेरे को अपने इसमें लेंगे नहीं, तो इसलिए वो भी सीखने लगता। तो ये है दुर्भाग्य। हाँ, तो सच बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये थोड़ा विचार करके बोलना चाहिए। और उसमें हमें खास करके रामायण और महाभारत से दो ऐसे विषय आते हैं, जब सच तो बोलना है लेकिन अगर सच बहुत कड़वा है तो क्या करें। विषय ये है कि सच बोलना है लेकिन सुनने वाले बहुत कम होते हैं। किसी को रामायण से याद आ रहा है कुछ, रामायण से कोई ऐसी घटना याद आती है, सच बोला लेकिन उसका विपरीत हो गया क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। विभीषण और रावण, बहुत संक्षेप में मैं कथा बताता हूं। रावण जिस दिन हनुमान ने लंका को जलाया, हनुमान तो चला गया, चेतावनी देके गया, थोड़े देर के लिए रावण डर गया, बोलते ये तो ऐसे तो किसी ने किया नहीं है, ये तो लंका को जला के गया। और वो भी चेतावनी क्या दिया हनुमान ने, अरे मैं तो एक साधारण वानर हूँ, वहाँ पे तो करोड़ों हैं, मैं तो एक साधारण हूँ। सोच लो रावण, अभी भी वक्त है, सीता को रिहा करो। तो रावण ने क्या किया, सोचने लगा, थोड़ा सा दिमाग में आया हो सकता है बोल रहा है सही है, तो उसने अर्जेंट मीटिंग बुलाया। सो मीटिंग बुला के बोला ऐसा ऐसा है, तो मैं आप लोगों से पूछताछ कर रहा हूँ, आप लोगों को क्या सही लग रहा है, बट इतना है कि सीता को रिहा करने का मत बोलो, अभी मुझे सुझाव दो क्या कर। ये ऐसे ऐसे हनुमान जो आया था वानर, तो उसके जो होते हैं ना कुछ यस मिनिस्टर बोलते हैं ऐसे, हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, ऐसा शब्द बोल रहे हैं जो रावण को सुनने के लिए अच्छा है लेकिन हित के लिए है। क्या बोला उन्होंने, अरे रावण क्या बात कर रहे तुम, अरे ये तो वानर अकस्मात आ गए, हम लोग तैयार नहीं थे, आने दो फिर से उनको मार देंगे, मैं तो अकेला जाके उनको पूरा नाश कर सकता हूं, और तुम तो क्या, तुम तो इंद्र का पराजय किया है, तुम्हारे सामने कौन आ सकता है। प्रिय है ना, अच्छा लगा, सच है क्या, हित में है, तो रावण को अच्छा लगा। लेकिन सच बोलने वाला कौन था, विभीषण। विभीषण बोलने लगा, देख मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा हित चिंतक हूं, मैं बोल रहा हूं ये लोग बेवकूफ है, तुम छोड़ दो, सच बताया उन्हें, तैयार नहीं था सुनने के लिए। क्या जवाब दिया, मुझे मालूम था है। जो भाई होता है वो हमेशा खिलाफ होता है दूसरे भाई का, अगर तुम मेरे भाई नहीं होते ना मैं तुम्हें मार डालता था आज, निकल जाऊं यहां से। सच बोला, कड़वा लगा, लेकिन परिणाम ये हुआ कि उसके हित में ही नहीं था। महाभारत में भी आती है ना कथा, धृतराष्ट्र और विदुर। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह से इतना वंचित था कि बाहर से तो अंधा ही था, लेकिन अंदर से भी अंधा ही था, समझ में नहीं आ रहा था। बहुत इज्जत करता था वो विदुर का, क्योंकि उसे मालूम था कि विदुर बहुत विद्वान है, लेकिन विदुर के शब्दों से हाँ हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, दुर्योधन नहीं मानता। दुर्योधन जब ये सुनता है तो इतना कठोर शब्द उसने इस्तेमाल किया, अपने चाचा विदुर को ऐसे बोलने लगा, हाँ कि पूरा वहां से निकाल दिया उनको। विदुर बोल रहा था ये सच है, हित के लिए, लेकिन कड़वा है। तो कैसे कहें फिर, सच तो बोलना है ना, तो कड़वा तो लगेगा कि बोले कि नहीं बोले। आपको क्या लग रहा है, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए? तो प्रभुपाद कहीं जगह पे ऐसे लिखते हैं कि जो एक अच्छा भक्त होता है, अच्छा भक्ति में अच्छा अगर प्रगति किया है, वो जब ही सच बोलता है, सच हमेशा कड़वा होता है, हम कभी पसंद नहीं करते कोई हमारे बारे में कुछ बोले अगर वो सच भी, लेकिन वो सच इस तरह से बोलेगा कि उसके हृदय को स्पर्श करेगा और वो स्वीकार करेगा। तो ये बताया गया था उस अपने श्लोक में कि किस तरह से हमें ये सीखना कैसे है। तो विदुर, जब विदुर युद्ध में तो भाग नहीं लिया था उसने, तो चला गया था, उसके बाद वापस आ गया जब पता चला कि कौरवों का सब पराजय हुआ है, और देख रहा है कि धृतराष्ट्र अभी भी वहीं पे है, अभी भी अपने भाई के पुत्रों के उनके देखभाल किया वहीं पे रहा है। तो इतना कठोर इस बार लेकिन धृतराष्ट्र को थोड़ा समझ में आया, तभी उन्होंने सोचा कि हाँ। तो ऐसा नहीं है कि सच बोलने से हमेशा उसका, जैसे अभी हम लोग भगवद गीता का प्रचार करते, ये तो सच है, सबको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, जो कार्य हम करते हैं उसका हमें फल मिलता है, ये तो सच है। अभी जिसको लगता है वो तो स्वीकार करेगा, जिसको नहीं लगता है, लेकिन सच को तो बोलना है ना। तो ये है सच, लेकिन सच बोलने का भी तरीका होता है कई बार। जैसे एक राजा था और एक उसने अपने ज्योतिष इसको बुलाया और उसने बोला क्या है मेरे भविष्य में, तो ज्योतिष ने बोला उस राजा, अरे तुम्हारे तो इसमें लिखा है कि तुम अपने परिवार के हर लोगों की अंतिम क्रिया करोगे, तुम लंबा आयु जियोगे, सब लोग तुम्हारे सामने मर जाएंगे। तो राजा ये बोल रहा था, लेकिन राजा को इतना बुरा लगा उसने उसको जेल में डाल दिया। उसने दूसरे एक ज्योतिष को बुलाया, तो ये ज्योतिष भी वही बोलना था, उसने भी देखा ऐसा लिखा है, तो उसने कहा राजा तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा आयु है ना सब परिवार के सदस्यों से लंबा होगा। दोनों में अंतर है कि नहीं, दोनों सत्य थे लेकिन बोलने का ढंग अलग है। तो ऐसे हमारे निजी जीवन में बहुत बार ऐसे होता है, कई बार हम कुछ देखते हैं सुनते हैं, लेकिन किस तरह से हम एक के बारे में दूसरे को कहते बोल, ज़्यादातर जो तमा गुण में होता है उसको थोड़ा सा ऐसे करने की आदत होती, जानते हो अगर मुझे किसी पे दोनों के बीच में कुछ लाना है, तुम्हें मालूम है वो तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, होता है कि नहीं ऐसे? हाँ, जो सुन रहा है उसके आंखें ऐसे फूल जाते हैं ना, क्या बोल रहा है बताओ मुझे, और जैसे उसने सुन लिया हो गया, उसका दिल बदल गया, क्या हुआ, रिश्ता बिगाड़ दिया या सुधार लिया? तो ऐसे एक अच्छा एक उदाहरण है जहां पे एक व्यक्ति ने कैसे बिगाड़ने के बदले सुधार दिया। तो एक राजा अपने राजमहल से बाहर आता है और देखता है कि पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा है, ऐसा ही राजा कहता है अपने मंत्री को, ये व्यक्ति जो बैठा है ना उसको मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत चिढ़ आती है, इसने बात भी कुछ नहीं किया है, उसे मिला नहीं, कौन है कुछ नहीं मालूम, बोलते मैं उसको देखता हूँ, हर दिन मैं देखता हूँ, बैठा है वहां पे पेड़ के नीचे और मुझे बहुत चिढ़ आती। तो ये मंत्री, अभी मंत्री उसके पास जाता है, अभी उसको जाके बोल सकता था ना मंत्री को, राजा तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। उसने जाके उस व्यक्ति से पूछा, क्या बात है, तुम बहुत यहाँ पे अकेले पूरा दिन यहीं बैठे रहते हो, क्या है? तो उसने कहा, मैं क्या करूं, किस तरह का राजा है ये, है क्या? देखो मुझे, मैं तो कारपेंटर हूं लेकिन मुझे कुछ काम ही नहीं है, मैं काम नहीं है तो मैं कैसे जीऊंगा, ये कैसे राजा है? मेरे लिए कुछ तो एक काम तो मिलना चाहिए क्या? ऐसे उसके हृदय में द्वेष भाव था राजा के लिए, द्वेष भाव था उसके लिए, और वो पेड़ के नीचे बैठा है और राजा इधर से खाली देख रहा है, और राजा के दिल में भी द्वेष भाव आ रहा है। इसका मतलब है हमारे दिल में भी अगर द्वेष भाव है, हम वो द्वेष भाव उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अगर अच्छा भाव है तो अच्छा भाव पहुंचाते। तो इस मंत्री ने क्या बोला उसको, उसने सुना सब, अच्छा उसने ये नहीं, तो वो सुन के ऐसा नहीं बोला कि राजा तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, तो क्या बोला होगा फिर, वैसा नहीं बोला है तो उसने बोला, राजा बहुत दिन हो गया हमने कुछ उत्सव नहीं मनाया, हमारे लिए एक रथ की बहुत जरूरी है, तो रथ तो बनाना है। तो राजा बोला, हाँ रथ तो बनाना है, तो एक ऐसा कारीगर है तो ये बनाएगा। तो जाके कारीगर को बोला, देखो रथ बनाना है, रथ बनाया, उसके दिल से द्वेष चला गया, रथ बन गया, उसके द्वेष से चला गया, राजा के दिल से भी चला गया। तो इस तरह बोलने का जो है, हाँ किस तरह से बोलते हैं, उसे हम विकृति हो सकता है या क्या हो सकता है, संस्कृति हो सकता है ना। तो आज विषय वही है ना, एक है प्रकृति जो वाचा है, बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं, लेकिन कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हित के लिए है, वो निर्णय लेगा वो संस्कृति है या विकृति है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो जीवा है बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है, और उसको अगर सही तरह से हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हमारी दिशा और होगी। लेकिन हम कहते हैं, अरे हम तो क्या है, मैं तो माला करता हूँ, 16 माला जाप करता हूँ, ये तो बहुत है, इससे ज़्यादा क्या है ये, अरे ये तो मेरी आदत है, मैं इसको, ये भी छूट जाएगी, देख लूँगा कभी शुद्ध हो जाऊँगा, तो ऐसे कहने से नहीं चलता है। हर एक को हमें बदलने की ज़रूरत होती है, हम यहाँ पे बदलने के लिए है, सही है। मनुष्य शरीर मिला है किसके लिए मिला है, शुद्ध होने के लिए ना, शुद्धिकरण ना, शास्त्र बताता है मनुष्य शरीर तपस्या के लिए है, शुद्धिकरण के लिए है, इसलिए नहीं है कि। तो इसलिए ऐसे विषयों को ज़्यादा जोर दिया जाता है। हाँ ये सच है, मंदिर भी आते हैं, दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं, जपा करते हैं और बहुत सारे नियमों का भी पालन करते हैं, लेकिन अगर हमारी आदतें, हम ये नहीं बोल सकते अरे मेरी आदत है ये, मैं तो ऐसे ही हूँ, अगर वो आदत नहीं है तो क्या करना है, आदत को बदलना है ना। हाँ 31 तारीख को, हर दिसंबर 31 तारीख को सब लोग वचन लेते हैं ना, ऐसे बोलते हैं बस अगले साल कल से शुरू हो रहा है, ये मेरी बुरी आदत है इसको मैं, लेकिन अगर सच्चा दृढ़ता नहीं है, अगर उद्देश्य नहीं है, हाँ लक्ष्य मालूम नहीं है किस लिए कर रहे, तो ज़्यादा दिन, इसलिए ऐसे विषयों को सुनना, तभी हमारी जो भी हम वचन लेते हैं उसका कोई मतलब होता है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। भौतिक संसार में भी करते हैं ना लोग, परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं तो कुछ वचन लेते हैं ना, बस आज से मोबाइल में ज़्यादा देर नहीं देखूंगा, करते हैं। तो यहाँ पे सोचो आप, वो तो परीक्षा के लिए, यहाँ तो हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुँचना है, और जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य शरीर मिला है, जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, कहीं भी हो आप संसार में, आप रशियन हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, जीवन का लक्ष्य बदलता है, जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि जो भूला हुआ भगवान के लिए जो प्रेम है उसे फिर से जागृत करना है, यही जीवन का लक्ष्य। तो उसके लिए ऐसे विषय बहुत जरूरी है। तो फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि अरे हम तो माला जाप करते हैं, हम तो पाप नहीं करते, हम वो नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन भक्ति का जो एक बीज होता है ना, वो हमारे हृदय में एक बीज की तरह प्रवेश किया। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, आपको श्रद्धा है, सही लग रहा है, बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है एक बीज। तो अगर वो बीज को उगाना है तो क्या लगता है, पानी तो डालना पड़ता है ना, तो सिर्फ पानी डालने से चलता है? जैसे पानी है, श्रवण करना, अध्ययन करना, लेकिन खाद भी होना चाहिए ना, मट्टी भी नरम होना चाहिए, और कोई ऐसे जंगली जानवर से रक्षा भी करना पड़ता है, तो कितने सारे विषय आ गए। तो हम ये नहीं बोल सकते बस बीज है मिल गया, मैं भक्ति करूँगा और मैं माला जाप करूँगा और हो जाएगा। तो इसलिए वाणी की संस्कृति के विषय के ऊपर आज जोर दिया गया है, ये बताने के लिए कि किस तरह से हम बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। तो अभी अंत में एक बहुत ही एक अच्छा विषय आपको मैं बता रहा हूँ, ये भी देखो शास्त्र में लिखा है। ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे मैं बैठ के आप ध्यान दे रहा हूँ, ये जो कुछ बोल रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ, मेरे लिए है, आपके लिए है, सबके लिए है, ये सत्य है, ये हमारे हित के लिए है। तो ये हमारे एक शास्त्र में एक ऐसा एक श्लोक आता है, उसका नाम है, नहीं ये श्लोक बोलने से पहले मैं आपको एक बताता हूँ, एक बहुत अच्छा एक शायद आप लोगों ने एक ऐसे में अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना, एक स्कूल में एक टीचर अपने बच्चों को बोल रही है, टीचर बच्चों को बोल रही है भगवान दिखते हैं क्या? तो लोगों ने क्या जवाब दिया, ये लोग तो भक्त लोग हैं ना, तो ये लोग बोले दिखते हैं, लेकिन जिनको नहीं मालूम वो क्या दिखते हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब नहीं दिखते। क्या भगवान को स्पर्श कर सकते हैं? तो किसी ने बोला नहीं। क्या भगवान को सूंघ सकते हैं? तो नहीं। जो देख नहीं सकते, जो छू नहीं सकते, जो सूंघ नहीं सकते, वो कैसे हो सकते हैं, ऐसे टीचर ने बोला। तो सब बच्चे निराश होके, इसका मतलब भगवान नहीं है। उसमें एक लड़का खड़ा हो गया, हाथ ऊपर करके बोला, तो उसने बोला हमारे टीचर के अंदर ब्रेन है, कोई देख सकता है? ब्रेन को क्या बोलते हैं हिंदी में? भेजा दिमाग। हमारे टीचर के सर में जो भी है, भेजा है, दिमाग है, दिखता है? तो सब बच्चों ने बोला नहीं दिखता है। क्या स्पर्श कर सकते हैं? नहीं स्पर्श कर सकते हैं। क्या सूंघ सकते हैं? नहीं सूंघ सकते। इसका मतलब टीचर को नहीं है ब्रेन। आप लोग हंसी नहीं आ रही है किसी को? तो फिर वो टीचर भी थोड़ा सी स्तब्ध हो गई, अरे ये सच है, ये लड़के ने तो बराबर बताया। तो जो चीज हम देख नहीं सकते, जो छू नहीं सकते, जो सूंघ नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो नहीं है। सिर्फ फर्क इतना ही है, इस तरह के इंद्रियों से हम उसे जान नहीं सकते, इस आंखों से देख नहीं सकते, इस नाक से सूंघ नहीं सकते, इस हाथ से स्पर्श नहीं सकते, तो फिर कैसे करेंगे? मुझे अनुभव करना है, मुझे देखना है, मुझे सूंघना है, मुझे स्पर्श करना है। तो उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, ये सुनने के बाद आपका जीवन बदलना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको सोचते जाना चाहिए कि, और ये बड़े एक महान भक्त इस परंपरा में जिनका नाम है रूप गोस्वामी, उन्होंने ऐसे बताया, ये संस्कृत में है, तो ये संस्कृत में है, संस्कृत में ऐसा लिखा है, अथा श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रह्यम इंद्रिये सेवन मुके ही जीवाधो स्वयं एवा स्फुरत्यधा। संस्कृत है, संस्कृत पंडित तो कोई है इसमें नहीं है, तो इसको समझाना पड़ेगा क्या, तो यहाँ बताया है, वो बोलते हैं सब हमारे लिए, भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान की महिमा, अगर उसे जानना है तो इस इंद्रियों से हम जान नहीं सकते, ये जड़ इंद्रियां है, जैसे आँख है और हमारी जीवा है स्पर्श करने की, इससे नहीं, तो फिर कैसे, फिर कैसे, कुछ तो जवाब होना चाहिए ना। सेवन मुके ही जीवा दो, सिर्फ सिर्फ उनकी सेवा करते हैं हम, प्रेम से सेवा करते हैं तो क्या करते हैं, वो खुद दर्शन देते हैं। अगर इससे देखने की प्रयास करेंगे, अपने ज्ञान से बोलेंगे मैं कोशिश करूंगा, नहीं होगा। जब प्रेम से नम्रता से आश्रय लेते हुए जब सेवा होता है, जैसे मंदिर आना ये भी एक सेवा है, भगवान के सामने हाथ जोड़ना ये भी एक सेवा है, नम्रता से प्रणाम करना ये भी एक सेवा है। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे उन्होंने बताया है क्या क्या करना है, तो जब ये सब कार्य करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो एक सेवा है, वो सेवा से जब प्रसन्न हो जाते हैं वो तभी हमारे अंदर की चक्षु होती है ना, दिव्य चक्षु कहते हैं, ये तो बाहर का है, इस बाहर में तो खाली बाहर की चीज़ें दिखती हैं, लेकिन अंदर की चक्षु को जगा देते हैं तो फिर आपका दर्शन होता है। तो इस श्लोक में हमारे लिए सीखने के लिए ये है कि सेवन मुके ही जीवा दो, तो सेवा करने का अलग अलग है, हाथ से कर सकते हैं, पैर से कर सकते हैं, बहुत सारे विषय से कर सकते हैं, लेकिन यही जीवा जिसके विषय में हम कहीं मिनटों से प्रयास कर रहे हैं विषय के ऊपर, तो यहाँ पे बताया कि वही जीवा जो है हम भगवान के नाम उच्चार करते हैं, तो यही जीवा उसके लिए लगाते हैं तो भगवान हमारे इंद्रियों को सब शुद्ध कर कर दर्शन देते हैं। ऐसे नहीं कि तुरंत किया और तुरंत आ गई, कितने करोड़ों जन्मों का पाप लगा हुआ है उसको मिटाने में भी तो टाइम लगता है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं होना चाहिए। और यही जीवा से और एक क्या कार्य करते हैं हम, एक तो बोलते हैं, दूसरा क्या करते हैं, जीवा से क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, प्रसाद ग्रहण करते हैं, स्वाद करते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो जो व्यक्ति इस जीवा का, जीवा को ऐसे सेवा में लगाता है, भगवान के नाम जाप करने में, दर्शन खुल गया नहीं ना, भगवान के नाम उच्चार करने में और प्रसाद ग्रहण करने में। अभी प्रसाद घर में तो हम लोग सब लोग भोजन करते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ करना है, जो भी चीज़ भगवान ने लिखा है गीता में उस तरह की चीज़, पत्रम पुष्पम पलम थोय, मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं कि वो चीज़ें जो नहीं है वो नहीं, भगवान के एक अलग प्लेट में डालकर शुद्ध एक तुलसी का पत्ता डालकर हम स्वीकार करने से पहले उनको भोग चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो प्रसाद बन गया, और वो प्रसाद को हम इस जीवा से लेते हैं, वो प्रसाद अंदर जाके असर करेगा, शुद्ध कर देगा, और हम इस जीवन के इस रहस्य में जो बहुत बड़ा संघर्ष का जीवन है, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, यही हमारी वाणी की संस्कृति है। तो संक्षेप में हमने क्या बोला विषय, वाणी की संस्कृति, और वो श्लोक कौन सा था, जिसके घर में भगवद गीता है खोल सकते हैं, 17वां अध्याय 15वां श्लोक पढ़िए, क्या लिखा है तात्पर्य सोचिए जरा, भगवान की वाणी है ये, भगवान तो कुछ झूठ बोलने के लिए नहीं आए ना यहाँ पे, हमें फंसाने के लिए आए क्या, तो अगर ये वाणी है हमें उपलब्ध, उसको लेकर स्वीकार करते हैं और जीवा से हम भगवान का नाम, जो कली संतरण उपनिषद बृहद नारदीय पुराण में बताया गया है कि कलयुग के लिए यही एक बहुत बड़ा दवा है, यही एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, जो भी इसका उच्चार करेगा उसका जीवन सफल होगा। कलेर दोष निदे राजन अस्थिर एक महान बुना, कीर्तनद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजे। ये कलयुग के लिए हम हमेशा कहते हैं कलयुग का दोष है, कलयुग का दोष है, कलयुग में ऐसा हो रहा है, लेकिन कलयुग में एक वरदान है, अस्थिर एक महान बुना कीर्तनद एव कृष्णस्य, या तो अकेले में माला जाप किया या चार लोग साथ में आके भगवान का कीर्तन करेंगे, और भगवान कहते हैं कि ऐसे करने से मुक्त संग, यानी मन ऐसे विषयों में लगाया हुआ है सब, और इससे हमें डर, चिंता, भय, क्या क्या सब ऐसे भावनाओं का सामना करना पड़ता है, उससे मुक्त हो जाएगी आप। आत्मा शुद्ध, शांति, प्रसन्नता, सुख, ये है कलयुग का गुण, ये शास्त्र में बताया है। हाँ, प्रायेण अल्प आयुषा कलेरस्ति युगे जना, मंदसो मंद भाग्या मंद भाग्या उपाद्र था। सुनना है इसका अर्थ आपको, ये भी हमारे लिए बताया गया। बोलते कलयुग में, कौन सा युग है ये? कलयुग में प्रायेण अल्प आयुषा, ये तो बहुत कोई भी समझ सकता है। प्रायेण अल्प आयुषा, अल्प यानी कम, यानी कलयुग के लोगों का आयु बहुत। प्रायेण अल्प आयुषा कलेर अस्ति युगे जना, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे। मंदसो मंद भाग्या, मंद भाग्य करता है थोड़ा भी किसी ने कुछ बोल दिया उधर दिशा पलट गए, उधर उस रास्ते पे चले गए। और वैसे देखने के लिए बहुत सारे हैं, है ना, कुछ भी सामने दिखा गया पूरा उधर गया। मंद सुमंद भाग्या, मंद भाग्या बहुत ही बदनसीब है। उपाद्र था, उपाद्र था ने मानसिक, इतने सारे समस्या है मानसिक, किसी से भी पूछो बोलते हैं टेंशन है, बहुत टेंशन है, नींद नहीं आती रात को। तो ये शास्त्र में पहले लिखा है मंद भाग्य उपाद्रित। तो इसके लिए सिर्फ एक ही दवा है, मंत्र अनेक है, लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि एक सब मंत्रों का एक मंत्र है, उसे कहते हैं महामंत्र, है ना, जो सब तरह के जो कुछ भी अंदर जमा हुआ है कितने साल से, उसको सबको नष्ट कर देगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका एक ही दाम है। कितना पैसा लगेगा उसको आपको खरीदना है तो? कितना पैसा लगेगा? निःशुल्क मिलता है, लेकिन एक दाम जरूर है, वो है श्रद्धा। अगर श्रद्धा है, श्रद्धा तो सहाय बहुत चीजों में हमारी, तो इस विषय में श्रद्धा है, स्वीकार किया है, माला ले लिया और वाणी की संस्कृति के कुछ विषयों को हमने स्वीकार किया, तो हमेशा तो हम मंदिर आ नहीं सकते हैं। तो घर में भी एक ऐसे संस्कृति को बनाया जिसमें से एक मैंने बताया, भगवान को भोग चढ़ा के ही लीजिए, शाकाहारी बिना कांदा लहसुन जो शास्त्र में वर्जित है उसको अपना कर जब लेते हैं, रोज तो दिन में 3 बार खाना पड़ता है, क्यों ना ऐसा करके खाते हैं, तो अपने आप मुंह में डाल दिया और बस उसका असर अंदर शुरू हो गया। और जो ऐसे करते हैं उसका जीवन निश्चित सफल होता है। और हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का शुरुआत जो है परदेश में जब हुआ, ऐसे किस तरह के लोग थे, अरे बहुत सारे ऐसे पाप कार्य में लगे हुए थे, लेकिन उनकी शुरुआत हुई सेवन मुके ही जीवाधो, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण करते 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 बड़े वैष्णव बन गए। और वही लोग आज हमें आके बताते हैं, और हम लोग बोलते हैं अरे हमें सब मालूम है, अरे तो मैं भगवद गीता तो मेरे बाप पीढ़ियों से पढ़ा हुआ है, लेकिन पढ़ा नहीं ना, लेकिन वो तो सब पढ़ के हमें बता रहे हैं, हमारे इसको बता रहे, ये हमारी दुर्भाग्य। इसलिए हर एक व्यक्ति जो भी सुन रहे हैं, हमें इसे आगे लेना है, हमें इसे बढ़ाना है भगवद गीता का दो धर्म शास्त्र को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी सबसे निवेदन है कि आप लोग राजभोग आरती में भाग लीजिए, और कलयुग का एक ये भी वरदान है कि जो भगवान के सामने नृत्य करता है, हाथ ऊपर कर कर कीर्तन में भाग लेता है, वो बहुत शीघ्र ही इस भौतिक संसार के इस दुखमय सागर से वो पार कर लेता है। तो अभी ये मौका है हम सबके लिए, अभी कुछ समय के लिए अभी कीर्तन होगा, सो मैं निवेदन करता हूँ कि सब लोग भाग लीजिए हाथ ऊपर कर कर भगवान की प्रसन्नता के लिए, नृत्य भी कर सकते हैं, और उसके बाद सभी के लिए ललिता भवन में प्रसाद है, तो बिना प्रसाद मत जाइए। तो दोनों हो गया, जीवा का सेवा कीर्तन से भी होगा, प्रसाद से भी होगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का,
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आदिकेशव प्रभु। प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी ने जैसे कहा अभी संकीर्तन होगा, श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होगा, सभी जन उसमें भाग लीजिए, नृत्य करते हुए भाग लीजिए, उसके पश्चात सबके लिए लंच प्रसाद है, उसका ग्रहण करते हुए घर लौट सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे वो जे पहिल्यांदा आले त्यांना साडे बस निघून जातील सगळे।
हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।